for all of us, especially Sunday evening talk viewers and the participants. Why? Because today is special. One is today is Father's Day. Today is Father's Day, no? Yeah. So our Father is the Supreme Soul, who is the Father of all of us, who is binding all of us, the children, together with His love and care and concern. And one special thing today, another special thing today is the visit of Chakradhari Didiji, whom you are already seeing, and your life is blessed with her words of wisdom today. जैसे आपको मालूम है यहाँ पर टाइम टू टाइम बहुत सारे महारथी आते हैं हमारे साथ में और हमको बहुत अच्छे एनलाइटन करते हैं उनके बोल के द्वारा, वाइब्रेशंस के द्वारा और उनके प्रेजेंस के द्वारा. तो आज हमारे बीच में बहुत बड़े हस्ती राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी को हम करतल ध्वनि से संडे इवनिंग टॉक में स्वागत करते हैं. दीदी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है. आप वैसे ब्रह्मा कुमारीज के साथ बचपन से जुड़े हुए हैं, खास करके ब्रह्मा कुमारीज के जो फाउंडर फादर आप सब सुने हैं और बहुत सारे कहानियां भी आप बीच बीच में सुनते रहते हैं ब्रह्मा बाबा, उनके साथ अपना टाइम बहुत समय साथ में रहकर अपने आप को एम्पावर किए हैं. और साथ साथ जगदम्बा सरस्वती जी, जो जिसको हम प्यार से मम्मा कहते हैं, उनके साथ भी अपना टाइम बिताकर बहुत सारे एक्सपीरियंस से फुल है. और दीदी को जब भी देखते हैं तो लगता है जैसे एक माँ का स्वरूप हमारे सामने आता है और उनके प्यार भरी जो बोल है और उनके वाइब्रेशंस है, ऐसे लगता है कि हम बहुत एनलाइटन भी है और साथ साथ पावरफुल भी होते हैं तो लाइट भी होते हैं. तीन दिन से खास यहाँ पर दीदी आए हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स कराने के लिए, जो ब्रह्मा कुमार संत कुमारी रेगुलर बेसिस में आते हैं उनके लिए कुछ एम्पावरिंग प्रोग्राम्स कराने के लिए. इतना बिजी शेड्यूल में भी दीदी खास टाइम निकाले हैं हम सबको भी एम्पावर करने के लिए. तो आप सभी का सौभाग्य है. और दीदी वर्ल्ड वाइड में एलोक्वेंट स्पीकर भी है और वर्सटाइल स्पीकर भी है. खास दीदी के एक्सपीरियंसेस से वही चाहिए ना, बड़ों के साथ वही चाहिए हमको, उनके एक्सपीरियंस से हमको एम्पावर करने का. तो वो खास हम देखते हैं दीदी से. और बहुत सारे मैगजीन्स में जर्नल्स भी पब्लिश करते रहते हैं, बुक्स भी पब्लिश किए हैं. और ब्रह्मा कुमारी इसके साथ ओवर 60 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 6 decades ऑफ एक्सपीरियंस. तो हम समझ सकते हैं कि कितना एम्पावर्ड सोल है और कितना बहुत प्यार का मूर्ति है. बहुत वही खास मेरे को याद आता है. और ब्रह्मा कुमारी इसके जो डिफरेंट विंग्स है, आप सभी को मालूम है टाइम टू टाइम डिफरेंट विंग्स वाले आते रहते. तो खास दीदी है विमेन्स विंग के चेयरपर्सन. तो माताओं को खास अपने शक्ति से दूसरों को भी सशक्त करते रहते हैं. और ब्रह्मा कुमारी के जो रशिया के ब्रांचेस है वहां के डायरेक्टर भी है. और साथ में दीदी ने वहां पर ब्रह्मा कुमारी का खोलने का निमित्त बने हुए हैं. तो दीदी खास इंडिया में दिल्ली में रहते सेवाएं देते हैं, बहुत सारे सेंटर्स के संचालिका भी है और साथ में फॉरेन में भी बहुत सेवाएं डिफरेंट कंट्रीज में और रशियन एंड डिफरेंट कंट्रीज में भी दीदी टाइम टू टाइम सेवाएं देते हैं. तो हम सभी का भाग्य है आज संडे इवनिंग टॉक वालों का दीदी से अपने जीवन के बारे में, किसी के जीवन के जीवन से हमारे जीवन के लिए क्या लाभ मिलेगा, कैसे अपने आप को चलाना है, ये सब सुनते हैं आज रिदम ऑफ लाइफ. तो मैं आमंत्रित करती हूँ माधव रेड्डी भाई और उनके युगल दीदी को पुष्प गुच्छों से आप सभी के तरफ से संडे इवनिंग टॉक वालों के तरफ से दीदी को वेलकम करेंगे और हम सब करतल ध्वनि से दीदी को वेलकम करते हैं. तो चलिए चलिए एक मिनट परमात्मा की याद में बैठते हैं, फिर धीरे से हम सब सुनते हैं।
ओम शांति, ओम शांति। जैसे हम आपस में मिलते हैं तो मिलने पर कोई कह देता है नमस्ते, कोई हेलो कर देता है, लेकिन हम यहाँ ओम शांति शब्द का उच्चारण करते हैं, परंतु हमारा ओम शांति शब्द कहने से ये मतलब नहीं है कि हम हेलो या नमस्ते कर रहे हैं। हम स्वयं अपने स्वरूप को स्मृति में लाकर और दूसरों को उनके स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं। और ये क्या स्मृति है कि मैं शांत स्वरूप हूं और आप भी शांत स्वरूप हैं। क्योंकि आप देखो, हम कभी किसी छोटी छोटी बात से अशांत हो जाते हैं। किसी ने ऐसी बात कही जो मुझे पसंद नहीं, मैं अशांत हो गई। मैं बैठी हूं, किसी ने ऐसा जोर से मेरी कुर्सी को हिलाया कि मैं गिरने ही वाली थी, मैं देखती हूं मैं थोड़ी अशांत हो जाती हूं। किसी का बोलना फेवरेबल नहीं है, हमेशा ग्लानि या निंदा करता है, हम अशांत हो जाते हैं। इस बात को मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि ये बात हमें स्पष्ट करती है कि हम अशांत हैं नहीं हैं। हम सब बहुत शांत, बहुत सुख में हैं, आनंद में हैं, लेकिन किसी का बोल सही नहीं, किसी का व्यवहार ठीक नहीं, किसी का एक्ट मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, तो मैं उनका बोल व्यवहार और कर्म जो ठीक नहीं उसे अपने अंदर ले लेती। अब जब मैं उसको अपने अंदर ले लेती हूँ, जबकि वो मेरी चीज है नहीं, चीज किसी की है और वो ठीक नहीं है और मैंने अपने अंदर ले ली, तो जरूर है कोई फॉरेन मैटर अगर हमारे अंदर जाएगा तो जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा या कोई डॉक्टर मेडिसिन देकर उसको बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक मैं आपको हेल्दी अपने को फील नहीं करूंगी। ऐसा लगता है कुछ हो रहा है मुझे, अच्छी किसी प्रकार हम भी दुनिया में रहते हैं, असल में हम अशांत हैं नहीं, दुखी हैं नहीं, परेशान हैं नहीं, लेकिन जब हम किसी के बोल कर्म और व्यवहार से सेटिस्फाइड नहीं होते और उस बात को अपने मन में चिंतन में ले आते हैं तो हम अशांत और परेशान हो जाते हैं। तो ये हमारे ऊपर है, हमने शांत रहना है या अशांत होना है, हम स्वयं स्वयं से डिसाइड करें। कहते नहीं, हम तो शांत रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरे बोलते ही ऐसा है, व्यवहार ही ऐसा करते हैं तो हम अशांत हो जाते। आप दूसरा बोलता है या व्यवहार करता है तो आप उसको एक्सेप्ट क्यों करते? आप ना एक्सेप्ट कीजिए, मालिक हैं आप। मैं आपको कुछ भी देती हूं, अगर मेरा रिगार्ड रखने के लिए आप मेरी दी हुई चीज को ले लेते हो, लेकिन आप समझते हो ये मेरी हेल्थ के नुकसान करेगी, मेरी मेंटल स्टेज को डिस्टर्ब करेगी और मेरे शरीर में ये चीज कुछ नेगेटिव इफेक्ट डालेगी, इसलिए आप मौका देखकर उसे रख लेते हो और कहीं बाहर फेंक देते हो। ये नहीं उन्होंने दी इसलिए मैंने तो स्वीकार कर ली, उनकी अपनी चॉइस है, वो आपको कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए कि आपको एक्सेप्ट क्या करना है। आज हम ये कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, किसी ने हमको शांत परेशान दुखी किया नहीं है, ये हमारी इग्नोरेंस होती है। बोल किसी का खराब है, अशांत मैं हूं, व्यवहार किसी का ठीक नहीं है, दुखी मैं हूं। मुझे याद है एक बार एक भाई ने किसी को कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो बिल्कुल अनुचित थे, कहने नहीं चाहिए थे, लेकिन उसने उनको बोल दिए। वो बहुत परेशान, सुबह से परेशान, जहां तहां वर्णन कर रहे हैं, आज मुझे देखिए छोटा होकर उसने मुझे कैसा बोला। और शाम को हमने देखा तो बड़े खुश थे, हमने सोचा सुबह तो ही इतने परेशान थे, अभी कितने खुश हैं, क्या हो गया, परिवर्तन कैसे आ गया। तो मैंने पूछ ही लिया, सुबह बहुत परेशान थे किसी के बोल और व्यवहार से, अभी आप खुश नजर आ रहे हो, बड़े अच्छे लग रहे हो, क्या उसने आपसे आकर सॉरी किया है? कहा नहीं, सॉरी नहीं किया। मैंने कहा फिर खुश कैसे हो गए? कहा दीदी अचानक जहां वो रहता है मैं वहां से गुजर रहा था और वो विसल बजाता हुआ अपने उस आंगन में ऐसे टहल रहा था जैसे राजकुमार हो, और इस प्रकार चल रहा था बड़ा खुशनुमा कोई प्राणी हो। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया, किसने गलत बोल मुझे बोला, गलत व्यवहार इसने मेरे से किया, जिसने गलत किया उसे दुखी और परेशान होना चाहिए, मैंने ना गलत किया ना कुछ खराब बात कही और परेशान मैं हूं, जबकि परेशान जो गलत करने वाला है उसको होना चाहिए। इससे मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो तो बड़ा समझदार है, उसने अपनी गंदगी निकाली मेरे ऊपर डाल दी और मैं अपना कपड़ा लिए बोल रहा हूं बड़ा गंदा डाल दिया, बड़ा गंदा डाल दिया। जबकि उसने कोई चीज डाली नहीं है, आपको दी है। डाली होती तो चलो कपड़ा गंदा भी हो जाता, लेकिन दी है, आपने उसको स्वीकार किया। अब स्वीकार करने वाला परेशान है, देने वाला परेशान नहीं है। वास्तव में कहा गया है जो कर्म प्राणी करता है उसका अच्छा फल या बुरा दंड उसको भोगना पड़ता है। तो जिसने किया वो तो बुरा फल, बुरा कर्म करके अच्छा फल भोग रहा है, बुरा व्यवहार करके खुशी का फल ले रहा है, और मैं जिसने ऐसा कुछ किया ही नहीं मैं परेशान हो रहा। तो मैंने उसकी जब खुशी देखी, आनंद देखा, तो मैंने सोचा अरे छोड़ो, इसने कहा तो मेरा क्या गया। इसको डायग्नोज करने का तरीका अपना है। मेरा काम है कि इस डॉक्टर के डायग्नोज करने से, ये कहते हैं तुम अच्छे नहीं हो, मैं उसकी मेडिसिन खाऊं या ना खाऊं, उसका ट्रीटमेंट करूं या ना करूं, ये उसके डायग्नोज करने का तरीका है। मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया इसलिए मैं परेशान। आप कभी भी अपने आप से देखिए, जिस समय आप अशांत होंगे आपने कोई ना कोई बात किसी ना किसी की स्वीकार की होती, चाहे किसी के वाइब्रेशंस कैच किए हुए हैं, चाहे किसी का बोल कैच किया हुआ है, चाहे किसी का व्यवहार कैच किया हुआ है, कुछ ना कुछ आपने किसी अन्य मनुष्य का जो राइट नहीं ठीक नहीं वो आपने कैच किया। अब आप उनसे ट्यूनिंग मनाना चाहेंगे तो आपकी ट्यूनिंग मिलेगी नहीं, क्योंकि उसने जो दिया वो राइट नहीं, आपने जो स्वीकार किया वो परेशान हो रहे हैं। इसलिए ईश्वर हम बच्चों को ये कहता है, अगर कोई बात ठीक नहीं है तो आप मन में ये समझो कि जितना उसके पास ब्रेन है, जितनी उसकी बुद्धि है, वो उतना ही तो जजमेंट कर सकता है। जब उसके पास इतनी इंटेलेक्ट नहीं है तो उसकी जजमेंट जैसी भी है, उसका कष्ट वो उठाए, मैं क्यों उठाऊं। लेकिन हम कहते हैं उसने मुझे कहा, ये उसका तरीका है आपको परखने का या समझने का। उसका तरीका राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। हाँ, अगर आप ये समझते हो कि मैं इसमें बिल्कुल फील ना करूं और अपनी खुशी में रहूं, तो ये हमेशा से आगे ऐसा ही कहेगा। हर एक की रिस्पेक्ट होती है, हर एक की कुछ डिग्निटी होती है, मैं भी तो कुछ रिस्पेक्ट रखता हूं। ठीक है, अगर आप रिस्पेक्ट रखते हो तो ईश्वर ने हम बच्चों को कहा है कि सृष्टि एक स्टेज है, इस स्टेज पर वैरायटी रोल सब कर रहे हैं। अगर आप समझते हो कि एक मनुष्य राइट रोल नहीं करता और आपको उसका रेस्पॉन्स ऐसे देना है कि उन्हें मालूम पड़ जाए कि मैंने राइट रोल नहीं किया, तो आप एज ए रोल कोई भी प्ले कर सकते हो, अपना एक्ट कर सकते हो, लेकिन उस बात को अंदर से स्पर्श नहीं कीजिए। अंदर ले जाने से आपकी मनोस्थिति पर गलत चीज का इफेक्ट अवश्य होगा। अब मान लीजिए कोई मनुष्य है जिसका बोलना ठीक नहीं या व्यवहार ठीक नहीं है, लेकिन आप ये समझते हो कि ये अपने आप को ठीक समझ रहा है, आप बुरा ना मनाइए, आप मौका देख करके उनसे बात कर सकते हैं। भाई आपने ऐसा बोला, सचमुच आपने दिल से बोला या ऐसे ही आपके मुख से निकल गया, या आप कह सकते हैं मुझे आपसे एक बात करनी है। जब सुबह जो हमारी और आपकी बात हो गई, मैं विशेष आपके पास आया या आई हूँ कि उस बात के लिए कि आपने जो ये कहा वो आपने अपने आप से कहा या ऐसे अचानक आपके मुख से निकल गया। लेकिन दूसरा आपकी बात सुनना नहीं चाहता, वो आपसे डिस्कस ही नहीं करना चाहता, आपके साथ बैठना भी नहीं चाहता। ऐसे टाइम पर क्या किया जाए? हम कभी कहते ठीक है, आगे से हम आपसे कभी बात ही नहीं करेंगे, हमें जरूरत क्या आपसे बात करने की। मनुष्य सोशल बीइंग है, उसको कभी भी किसी की आवश्यकता पड़ सकती, कभी किसी से ऐसा कट ऑफ नहीं कर लीजिए। आप थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए, ये कह दो कि मैं तो आपकी बात से आपसे बात करने आया, लेकिन आप मेरे से बात करना नहीं चाहते। हालांकि कसूर उसी का है, आपका कसूर नहीं है। आप उस समय को पोस्टपोन कर दीजिए, ये ना कह दीजिए कि ठीक है आगे से हम बात करेंगे ही नहीं, आपका और हमारी कोई फ्रेंडशिप नहीं, जो हम आपस में इतने क्लोज थे आज से समझ लीजिए हमारी क्लोजनेस सब खत्म हो गए। इतनी जल्दी किसी चीज को ब्रेक करना रियलिटी नहीं है। उस समय हम ये कह सकते हैं आज अगर आप बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर कभी कर ले, छोड़ना नहीं उस बात को, लेकिन पोस्टपोन कर देना। और पोस्टपोन करने का मतलब है कि उस व्यक्ति को भी थोड़ा सोचने का टाइम मिल जाएगा कि मैंने जो बात की वो इस प्राणी को, तो मान लीजिए वो भी समझेगा कि मुझे भी शायद मेरा कुछ कहना इनको उचित नहीं लगा, इसलिए वे आपकी बात को थोड़ा सोचेगा और सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जब आप मिलेंगे तो आपकी बात उनसे हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि जब कभी ऐसे किसी व्यक्ति से बात करने के लिए जाएं जो कि गलत करता है, गलत बोलता है, परंतु अपनी गलती मानना नहीं चाहता है, तो ऐसे समय पर अकेले नहीं जाइए। आप जब जाइए तो अपने साथ तीन मित्र अवश्य लेकर जाइए, अकेले नहीं पहुंचिए। कौन से तीन मित्र? एक है प्यार, प्रेम, दूसरा है धैर्यता और तीसरा है सहनशीलता। ये तीन को अपना फ्रेंड बना लीजिए और तब कहिए चलो हम चलते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपके ये फ्रेंड आपकी धैर्यता बनाए रखेंगे, आपकी मधुरता बनाए रखेंगे, आपको टॉलरेंस पावर दिए रखेंगे जिससे कि आपकी बात उस प्राणी से हो सके। इस प्रकार दुनिया में वैरायटी लोग हैं और हर एक से हम चल नहीं सकते क्योंकि हर एक के संस्कार और स्वभाव अपने हैं, परंतु रोल हमको सबके साथ प्ले करना पड़ता है। आज देखा जाए एक घर परिवार में एक छत के नीचे रहते हैं, आपस में माँ बेटा बात नहीं करते, भाई बहन बात नहीं करते, पति पत्नी की आपस में बात नहीं होती, 10 घर छोड़ के उनसे हमारी फ्रेंडशिप है, लेकिन जिनके साथ हम रहते हैं, खाते पीते हैं, उनके साथ कभी बैठकर हम बातचीत नहीं करते। कारण क्या है कि संस्कारों का मिलान नहीं। कहते हैं उस दोस्त से या उस फ्रेंड से मेरी अच्छी बनती है, मैं अपने मन की बात कह सकता हूँ या उनसे अपनी बात सुन सकता हूँ, लेकिन अपने घर वालों से बात हम नहीं कर सकते, ना उनको सुना सकते ना उनकी सुन सकते। कारण क्या होता है, संस्कारों का मिलान नहीं होता। और आप ये समझ लीजिए, दो संस्कार एक जैसे हो ही नहीं सकते। चाहे ब्राह्मण कितने गण मिला मिला कर शादी करता है, फिर भी कन्या और कुमार, वर वधु, पति पत्नी आपस में कभी कोई बहस हो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। दोनों के संस्कार बिल्कुल मैच नहीं करते, लेकिन हमको कोशिश करनी है एडजस्ट करें, तभी हमारी ट्यूनिंग मिलेगी। अगर मैं समझूं ये एडजस्ट करें और दूसरा समझे ये एडजस्ट करें और आपस में एक दो के साथ ही बहस होती रहे, तो दुनिया के लिए तमाशा बन जाता है। इसलिए कई बार किसी की अच्छी बात है तो अच्छी बात को देह अभिमान के कारण कई बार मनुष्य एक्सेप्ट नहीं करता। वो ऐसा समझता है कि इसका एक्सेप्ट करना जैसे कि मेरी ग्लानी है, और इसका एक्सेप्ट करना इसको ऑनर देना है, इसलिए मुझे इसका एक्सेप्ट करना ही नहीं है। और ज्ञान हमेशा कहता है अगर किसी की कोई अच्छी बात है तो उसको स्वीकार कर लीजिए। और आप अपनी अच्छाई की जो बात है वो बता दीजिए कि मैंने इस भाव से या इस लक्ष्य से ये बात कही है, लेकिन आपने ये कहा ठीक है। मान लीजिए किसी बात का डिसीजन हो रहा है, आठ व्यक्ति कहते हैं ये बात ऐसे ही होनी चाहिए और आप एक हो जो ये कहते हो कि ऐसी नहीं होनी चाहिए। अब आठ व्यक्ति एक तरफ, आप एक तरफ, अब आप सोचिए सब कहते हैं कि जहां इतने सारे हैं भाई आप क्यों नहीं मानते, आप मानिए। वो कहते मैं मान ही नहीं सकता, ऐसा होगा ही नहीं। ऐसे समय पर संगठन बनाए रखने के लिए हम ये कभी ना सोचें कि मैं जो कह रहा हूं वो राइट है, ये सब आठों के आठों गलत है। ऐसे टाइम पर ये कहना चाहिए अच्छी बात है, जो आप समझते राइट है तो मैं भी ये समझता हूं कि ये राइट ही हो जाए तो ठीक। अगर आप सब आठों कहते हो तो मैं भी आपके साथ मेल खाता हूं। हम क्या करते हैं, ये कह देते हैं आप आठों तो कहते हो राइट है, लेकिन मैं कहता हूं राइट नहीं, अब देखेंगे कौन राइट है और कौन रॉन्ग है, अब देखेंगे। कहने का हमने चैलेंज कर दिया। वो जो चैलेंज करना आपस में है, ये स्नेह और संगठन इससे नहीं बनता है, इससे ट्यूनिंग बनती नहीं है। आपस में हमेशा फ्रिक्शन बनी रहेगी, एक दो के विचारों में भिन्नताएं जुड़ी रहेंगी। इसलिए अगर घर परिवार को बनाकर किसी ने रखना है तो हम हमेशा कहते हैं चाहे आठ कह रहे हैं, आप उस समय कहिए अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि ऐसे ही हो जाए जैसे आप सब कहते हैं। और उस समय नेगेटिव विचार नहीं दीजिए कि इनका जो कहना है वो गलत है, हो ही नहीं, मुझे मालूम है होगा ही नहीं। आप उस समय इतने अच्छे विचार दीजिए कि अच्छा है आठों कह रहे हैं और ये कार्य अगर हो जाए तो कोई बुराई तो नहीं है, कोई हानि नहीं, कोई नुकसान नहीं, इसमें जीत हार की क्या बात। इसलिए आप ये कह दीजिए ठीक है, अगर आप आठों कहते हो तो मैं भी आपके साथ सहमत हूं। और सहमत होकर मन में ये ना कहिए होगा नहीं, होना वही है जो मैंने कहा है, कभी ऐसा नहीं करें। हम लोगों को ईश्वर हमेशा ये बताते हैं कि बच्चे कोई भी संगठन गीत जब गाते हैं, ग्रुप सॉन्ग में अगर एक की आवाज उस ग्रुप सॉन्ग के अंदर सबके साथ मिलान नहीं भरती है तो ग्रुप सॉन्ग को कोई इंजॉय नहीं कर पाता। एक ही है ऐसा जिसकी आवाज अलग है, लेकिन सारे कहते हैं अरे क्या गीत गाया इन्होंने, ये तो कोई अलग सी आवाज बीच में कोई आती है। अगर ग्रुप फोटो है और ग्रुप फोटो में एक मुंह बनाए हुए है या ऐसे वैसे कर रहा है और सारा ग्रुप अच्छा है लेकिन एक ही ऐसा है, तो आप उस ग्रुप फोटो को लेना नहीं चाहोगे, कहेंगे ये ग्रुप फोटो अच्छा ही नहीं लग रहा, ये देखो बीच में क्या कर रहा है। इसलिए अगर आपस में रहना ही है, सामाजिक प्राणी है, तो एक दो के साथ मिलान करके अगर हम रहते हैं तो घर परिवार में रहने में सुखद अनुभव होता है। अब हम सेवा केंद्रों पर रहते हैं, कोई हमारे साथ गुजराती है, कोई पंजाबी है, कोई बंगाली है, कोई महाराष्ट्री है, अब हर एक की संस्कृति, हर एक का बैकग्राउंड, हर एक की लर्निंग, हर एक का स्पष्ट करने का तरीका, समझ अपनी अपनी, लेकिन हम कभी एक दो से लड़ते नहीं हैं, मिलजुल कर खाते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर सब कार्य करते हैं। क्यों? समझते हैं कि इस स्थान के वातावरण में जब लोग आते हैं तो शांति लेने के लिए आते हैं, यहाँ कुछ जीवन के क्षण सुखद व्यतीत करने के लिए आते। अगर हमारे आपस के विचारों में भिन्नताएं रह जाएंगी तो भिन्नताओं से जो हमारा एटमॉस्फेयर होगा वो नेगेटिव एटमॉस्फेयर होगा, और नेगेटिव एटमॉस्फेयर हमने क्रिएट किया और जो यहाँ पर पॉजिटिविटी लेकर के अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए आते हैं वो कभी सुखद नहीं बना सकेंगे, और हम उनके सुखद ना बनने का और टाइम उनके वेस्ट होने के हम निमित्त बन जाएंगे। इसलिए हमारे विचार कई बार नहीं भी मिलते, लेकिन हम जिसके अच्छे विचार हैं उसको रिगार्ड दे दो, उसको सम्मान दे दो और उसके साथ मिल जाओ, अपने अलग विचारों से अलग गंगा नहीं बहा दो, एक ही धारा में बहेगी, वातावरण अच्छा हो जाएगा और धीरे धीरे हम सबके विचार मिलने लग जाएंगे। और हम देखते हैं कि जहाँ भिन्नताएं थी विचारों की वहां हम सबके विचार एक होने लग गए, जैसा वो सोचते वैसा वो सोचते, जैसा वो करते वैसा वो ही करते, हमने किसी को सिखाया नहीं है, थे भिन्न भिन्न लेकिन हमने भिन्नताओं के एटमॉस्फेयर को नहीं बनने दिया, एक दो के विचारों को रिगार्ड दिया, इनका अपने अनुसार सोचना राइट है, मेरा अपने अनुसार सोचना राइट है, जब कोई रॉन्ग है ही नहीं तो मैं उनके लिए नफरत करूं और उनको अपने से कमजोर समझूं या इन्फीरियरिटी मेरे अंदर उनके लिए आ जाए, ये रियलिटी नहीं, वो भी राइट है मैं भी राइट। कोई कहते हैं दो राइट कैसे होंगे, राइट तो एक होगा, नहीं वो अपनी थॉट के अनुसार, अपनी बैकग्राउंड की नॉलेज के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार वो ऐसा ही सोच रही है, और मैं अपनी समझ, अपने बैकग्राउंड, अपनी नॉलेज के अनुसार समझ रही हूँ, इसलिए मैं भी राइट हूँ आप भी राइट हो, काहे को एक दो से नफरत करें और मिलजुल कर काम कर लेते हैं। आप ये कर सकते हो आप ये कर लीजिए, मैं ये कर सकती हूँ मैं ये कर लेती हूँ, अगर आपको सहयोग देने का मन हो तो आप सहयोग दे देना, मेरा सहयोग देने का संकल्प होगा तो मैं आपको सहयोग दे दूंगी। बहुत ख्याल रहता है कि हमारे इस स्थान का वातावरण किसी तरह भी बिगड़े नहीं, क्योंकि ये वो स्थल है जहाँ जो आएगा वो शांति और सुख की अनुभूति करना चाहेगा, और हमारे वाइब्रेशंस यहाँ बहुत बड़ा काम करेंगे। मैं जब रूस देश में गई तो मैंने वहां एक नई बात देखी, अभी शुरुआत ही थी मेरी, तो मैंने देखा कि वहां लेक्चर होने के बाद, उस समय कम्युनिज्म था लेकिन कम्युनिज्म होने पर भी घर बच्चों ने लोगों को स्पिरिचुअलिटी की थोड़ी फ्रीडम दे दी थी, इस कारण हमारे लेक्चर में लोग 2,000-3,000 लोग आते थे और सुनते थे, परंतु रोज मेरे पास एक या दो आते और वो आके ये कहते कि दीदी हमारी किसी ने शक्ति छीन ली है। मैंने सोचा तीन लोग आ चुके, मेरी शक्ति छीन गई, ये तो कोई नई इस देश की बीमारी है, मैंने भारत में तो ऐसी बीमारी नहीं देखी है, हमारी शक्ति छिन गई। तो मैं हंसकर कह देती कि शक्ति आपकी है, आपने क्यों छिनने दी, आप उसको संभाल के रखो। वो मेरी तरफ आश्चर्यचकित होकर देखते, लेकिन वो मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे, परंतु तो ऐसा लगता था कि उनको ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने कोई हमको सलूशन नहीं दिया है। तीन दिन हो गए, रोज एक दो तो निकल ही आते थे, मेरी शक्ति छिन गई। मैंने सोचा इस पर विचार करना चाहिए, ये शक्ति छिन गई ये कौन सी नई बीमारी है। तो मैंने एक दिन सोचा, तो जिसने मुझे आके कहा, मैंने कहा तुम कहाँ बैठे थे, कहा मैं वहां बैठी थी। मैंने उनके आस पास बैठने वाले तीन चार थे, मैंने उनको बुलाया आप आएंगे, बड़ी खुशी खुशी से आ गए, क्योंकि वहां कोई फॉरनर पहले इतने पहुंचते ही नहीं थे, और कई जगहों पर मैं फर्स्ट फॉरनर थी, 89 की ये बात है। खुशी से आ गए, तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा आज आप यहाँ बैठे थे, आपकी कोई परिस्थिति, कोई घरों बात, कोई परेशान करने वाली कोई ऐसी घटना आपके साथ तो नहीं बीती है। उनमें से एक ने कहा, दीदी क्या आप अंतर्यामी भी हैं? मैंने कहा हम अंतर्यामी नहीं हैं, हम तो बाहर यामी हैं। लेकिन ऐसे ही मन में आया, कहा मैं एक ऐसी घटना से गुजर रहा हूं जिसको मैं फेस नहीं कर सकता, और मैं शांति और शक्ति ढूंढता हूं जगत में, कहीं मुझे मिल जाए, मैं दो क्षण शांत हो जाऊं, क्योंकि मेरी परिस्थिति इस कदर मुझे परेशान किए हुए। और मैं यहां भी बैठता हूं, कोशिश करता हूं मैं आपकी बातें सुनूं, मैं सुन नहीं पाता, क्योंकि ऑलरेडी मेरा इंटेलेक्ट ऑक्यूपाई रहता है मेरे उन थॉट्स में। मैंने बाकी तीनों को भेज दिया और उस एक को खड़ा किया। तब मैंने उनको ये कहा कि आपकी जो भी परेशानी है, हम समझ सकते हैं कि आज परिवारों में चाहे आर्थिक कंडीशन को लेकर या कोई सामाजिक परिस्थिति या कोई शारीरिक परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, परंतु अगर आप मुक्ति चाहते हो अपनी परिस्थिति से, तो एक काम आपको करना होगा। कहा मुझे कुछ भी बताएंगे मैं करने को तैयार। मैंने कहा जब आप आते हो तो आप लोग अपना डॉग बाहर चेन से बांध कर आते हो, क्योंकि अंदर डॉग अलाउ नहीं होता, और जब आप जाते हो तो जाती बार आप उस डॉग को अपने घर ले जाते हो। ठीक ऐसे ही आप जब यहां आओ गैदरिंग में, तो आपके जो नेगेटिव ख्यालात हैं और जो आपकी नेगेटिव सिचुएशन है जो आपको माइंड को डिस्टर्ब करती है, जिससे आप काफी अपसेट रहते हो, ऐसी बात को आप बाहर छोड़ कर आइए और उस बात को कह दीजिए कि जब मैं जाऊंगा तो मैं तुमको साथ लेता जाऊंगा, प्लीज अभी यहां ठहर जाओ। अब मेरे कहने से अपनी उस सिचुएशन की जो मन में बार बार चिंतन और चिंता लगी हुई है, आप उस चिंतन और चिंता को अपने डॉग मुआफिक आप उसको बाहर छोड़ करके फिर अंदर आइए। कहा इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे क्या होगा वो आप परिणाम स्वयं देखना। और सचमुच एक ने कहा मैं सीरियसली जो आप मुझे कहोगे मैं वो करूंगा, और मैंने इस बात को कईयों के साथ करके अजमा कर देखा बाद में। अब जब वो आए तो बड़े खुश खुश बैठे। मैंने उनको 5-7 खुशी की बातें सुनाई। आप इन खुशी की बातों का चिंतन करना, ताकि आपको रिप्लेस करना होगा उन विचारों को इन श्रेष्ठ विचारों से। और जब आप इन श्रेष्ठ विचारों का चिंतन करेंगे, तो ये जो गलत विचार, नेगेटिव विचार या आपको दुख देने वाले, टॉर्चर करने वाले आपको जो विचार हैं, वो कम से कम आपको कुछ नहीं कहेंगे। आप उनको छोड़ कर आए, और सचमुच जब वो छोड़ कर आए, एक नहीं होगा, होंगे और भी कई, लेकिन मैंने एक बार खास पूछ लिया। तो कईयों ने कहा सिचुएशन तो सबके साथ है, लेकिन चिंतन चलता है। मैं देखती हूँ जिसके कमजोर मनोस्थिति होती है, मान लीजिए किसी को जल्दी सर्दी का इफेक्ट हो जाता है, गर्मी का इफेक्ट हो जाता है, बड़ा नाजुक होता है कई मनुष्य, उनको जो ही सर्दी आएगी तो इफेक्टेड हो जाएंगे, जो ही गर्मी आएगी इफेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि उनकी प्रकृति वीक है, वो जल्दी गर्मी और सर्दी को टॉलरेट नहीं कर पाते। ऐसे कई मनुष्य ऐसे होते हैं कि कोई नेगेटिव एटमॉस्फेयर होता है तो नेगेटिव एटमॉस्फेयर को वो कैच कर पाते हैं, कर लेते हैं और उससे वो पीड़ित हो जाते हैं। तो ये जो कहते थे हमारी शक्ति छिन गई, इसका मतलब है ये थोड़ी कमजोर मनोस्थिति की आत्माएं हैं, और ये जहां उपस्थित हैं वहां कोई नेगेटिव विचार पावरफुल वाली आत्मा है, जिसका नेगेटिविटी काफी पावरफुल है या परेशानी काफी तेज, और ये परेशानी के जो वाइब्रेशंस हैं, ये आत्मा जो कमजोर दिल वाली है, ये उन वाइब्रेशन से कैच कर लेती है, उन वाइब्रेशन से, और कैच होकर इसको ऐसा लगता है कि मेरी शांति भंग हो गई, मेरा आनंद भंग हो गया, क्योंकि मैं आया तो शांति सुख लेने था, लेकिन वो नहीं लिया, लेकिन मुझे अशांति और दुख मिल गया। इस कारण ये कहता है कि मेरी शक्ति किसी ने छीन ली। तो हमने देखा उसने जब अपने ऐसे विचारों को बाहर रखा और ऐसे आया, वो आत्मा बहुत परेशान थी और उसकी शक्ल भी ऐसी थी कि जैसे वो जीवन से इतना निराश हो चुका है, डिसअपॉइंटेड फ्रॉम हिज लाइफ, कि मैं ऐसा शरीर छोड़ दूं तो अच्छा है। लेकिन वो थोड़े दिन में मैंने देखा उसके चेहरे पर खुशी आने लगी। कुछ दिनों के बाद मैंने, मेरे पास वो जो शिकायत आती रहती थी कि हमारी शक्ति छिन गई, वो शिकायत मेरे पास आनी बंद हो गई। 3 दिन आई, उसके बाद वो शिकायत नहीं आई। और जिसको मैंने ये कोशिश किया था कि आप इसको डॉग के समान अपनी परिस्थिति को बाहर छोड़ कर आना, तो मैंने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि आपका क्या हाल चाल है। कहा दीदी परिस्थिति तो बहुत बड़ी थी, लेकिन मुझे पता चला कि वास्तव में परिस्थिति बड़ी नहीं, वो छोटी है। उसको मैंने बड़ा बना करके, उसके इम्प्रेशन में इतना डिप्रेस्ड हो चुका था कि अब मुझे मेरी परिस्थिति का सलूशन मुझे मिल गया और मैं उसे हल करने की तरफ कदम बढ़ा रहा हूं। अब दोनों तरफ फायदा हो रहा है, उसको भी फायदा हो रहा है, जो नेगेटिव थॉट फैलाने वाला था उसको भी फायदा हो रहा है, जो नेगेटिविटी को कैच करने वाला था। कारण क्या हुआ कि वो जो नेगेटिविटी से निवृत्त होकर के उसे बाहर छोड़कर जब आया, तो मान लीजिए उसने यहां आकर अपनी कमजोरी से छुट्टी प्राप्त कर अपनी खुशी से एटमॉस्फेयर को पावरफुल बनाने की कोशिश की, और उस एक के पावरफुल बनाने से उसके संबंध में अन्य आत्माएं भी जो नेगेटिविटी को कैच करने वाली होती हैं, वो एक नहीं होती, होते कई हैं, उनको भी नेगेटिविटी कैच करने की शक्ति कम हो गई। और जब उनकी भी शक्ति कम हो गई, एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया कि सभी को पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने की अच्छी प्रेरणा मिलने लगी, और जिसकी परिस्थिति थी उसका पुण्य का काम हुआ, क्योंकि उसने अनेक आत्माओं को इस नेगेटिविटी से निवृत्त किया, उसके पुण्य का फल उस आत्मा को सुखद अनुभूतियां हुई। तो मैं हमेशा कहती हूँ, जब संगठन में हम आते हैं, चाहे घर परिवार में हम रहते हैं, क्यों आज एक समय था कि घर को आश्रम कह के पुकारते थे, आज आश्रम घर से अलग बन गए। किसी भी आश्रम में अगर आप जाओ, वहां आपस का मतभेद हो, तू मैं हो, खान पान की अशुद्धि हो, विचारों में टकराव हो रहा हो, आप फौरन कहेंगे ये कैसा आश्रम है। अरे यहाँ तो लोग मन की शांति और सुख के लिए आते हैं, यहाँ तो एटमॉस्फेयर ही ऐसा बना हुआ है। तो घर जिसके लिए गायन था ईस्ट आर वेस्ट, होम इज द बेस्ट, लेकिन आज उस बेस्ट होम में क्या हो रहा है? हम अपने आप से पूछें, उस घर के अंदर हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है? कहीं नेगेटिविटी तो नहीं है, जिससे हमने घर को अलग करके आश्रम को अलग कर लिया, और जब हमको शांति सुखद फीलिंग चाहिए तो हम आश्रम में जाते हैं, अपने घर में ही सुख आनंद नहीं पाते हैं, जबकि एक टाइम था कि घर ही आश्रम माना जाता, आज घर आश्रम नहीं रहे। इसलिए कई लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज क्या सिखाती हैं, लोग उल्टा प्रोपोगंडा हमारे लिए करते हैं कि कई कह देते हैं ब्रह्मा कुमारीज घर ही छुड़ा देती, लेकिन हम सबको बताते हैं कि हम उनको घर में रहने के योग्य बनाते हैं। घर को घर न समझो, घर को एक सच्चा आश्रम समझो। अगर एक के विचारों में भिन्नता है तो आप अपने विचारों को उनके विचारों से मिलाने की कोशिश करो, अगर भिन्न है तो टकराव में नहीं आओ, आप अपनी शांति की स्थिति में रहो, ये समझो ये अपनी जजमेंट के अनुसार ये राइट है, मैं अपनी जजमेंट के अनुसार मैं राइट हूँ, आओ भी मिलजुल कर कार्य करें, कोई बात नहीं। घर का वातावरण ऐसा बन जाए तो कितना अच्छा है। कई बार हमारा बोल सही नहीं होता है, वातावरण सही नहीं होता है। यहाँ हमारे इस विद्यालय का लक्ष्य ये है कि नर तो श्री नारायण कैसे बन, हे नारी तो श्री लक्ष्मी कैसे बन। शादी होकर आती है, भारतवर्ष में एक शब्द कहा गया है, शादी होकर जब कन्या लाते हैं तो कह देते हैं लक्ष्मी घर में आई, और जब दिवाली का दिन आता है तो मिट्टी की लक्ष्मी और रुपए की चांदी के रुपए की लक्ष्मी का पूजन होता है, घर की लक्ष्मी का कोई पूजन करते नहीं देखा गया, जबकि वो लक्ष्मी घर में आई है। लक्ष्मी को लाएगा भी तो नारायण, नारद तो नहीं लक्ष्मी को लेकर आएगा। तो ना नर नारायण जैसा रहा है, ना नारी लक्ष्मी जैसी रही है। इसलिए ईश्वर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं कि अपने घर परिवार को एक आश्रम निमा सुखद कैसे बनाओ। विचारों की भिन्नता होगी, विचार दो के एक जैसे नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने हम बच्चों को यह आज्ञा दी, आप सब अपने विचारों को मेरे से मिलाओ। मैं कौन हूं? मैं दया का सागर हूं, प्रेम का भंडार हूं, शांति का सागर हूं, आनंद का सागर हूं। आप अपनी मनोस्थिति को मेरे जैसा बनाओ। मैं गिरे को उठाने वाला हूं, मैं दुखियों को सुखी करने वाला हूं, मैं निर्बल का सहारा हूं, मैं अनाथ का स्वामी हूं। जैसा मैं हूं, तुम अपने स्वभाव और संस्कारों को किसी मनुष्य से नहीं मिलाओ, मेरे से मिलाओ। जब आपके स्वभाव संस्कार मेरे से मिल जाएंगे तो आप किसी से भी मिलाकर चल सको। अब कई बार ऐसा आता है कि हम ईश्वर से अपने स्वभाव संस्कार, ईश्वर तो ईश्वर है, हम कैसे उससे मिला सकते। ईश्वर ने हम बच्चों को बताया, गायन है कि संग का रंग तारता है और अगर कुछ संग हो तो वो डुबोता है। ईश्वर हम बच्चों को कहता है मेरे संग में आएंगे तो मेरे गुणों का, मेरे कर्तव्यों का और मेरी शक्ति का जो रंग है वो आपको लगेगा। और अगर मेरे गुण शक्ति और मेरे कर्तव्यों का रंग नहीं लगा तो दुनिया की वैरायटी रंग आपको नीचे लाए। अब उनका रंग हमको कैसे लगे, उन्होंने हमको तरीका बताया कि दुनिया में उस रंग को लगने का तरीका लोगों ने योग शब्द से संबोधित किया है। योग कुछ और चीज नहीं है, योग आत्माओं का परमात्मा के साथ संबंध का नाम ही योग है। अब परमात्मा के साथ आत्माओं का संबंध जुटे कैसे, कहते हैं जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो देह, देह की दुनिया, देह के संबंधी, देह के धंधे, बहुत चीजें हमारी अटेंशन को डाइवर्ट कर देते हैं। हम चाहते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता है। और हम कहते हैं हम ध्यान हटाना भी चाहते हैं, हमारा ध्यान नहीं हटता है, हमारा ध्यान उसी में लगता है। कारण क्या है, क्यों नहीं ध्यान लगता? तो यहाँ जो आने वाले हैं, और मैंने सुना है कि कई आप में से कोर्स भी कर चुके हैं और नियमित इतवार को भी आते हैं या कभी कभी आ भी जाते हैं, कोई नहीं भी आए होंगे, तो मैं आपको उनका संग कैसे हो उसी का तरीका बताकर पूरा करना चाहूंगी। उन्होंने अपने संग के लिए बताया कि आपका ध्यान जो देह और देह की दुनिया में डाइवर्ट हो जाता है उसका एक ही कारण है कि आप स्वयं को शरीर समझकर मेरा ध्यान करते हो। ख्याल रखो ये शरीर केवल मात्र इंस्ट्रूमेंट है, आप इंस्ट्रूमेंट को उपयोग करने वाले या उसका यूज करने वाले, आप यूजर हो, जिसका यूज करते हो वो ये शरीर है जो फाइव एलिमेंट से बना है। जो चीज बनती है वो चीज विनाश को प्राप्त होती है। कोई भी दुनिया की ऐसी चीज आप बता दीजिए जो एलिमेंट से बनी और कभी नाश ना हो। शरीर बना है, विनाश होगा, हाँ फाइव एलिमेंट्स कभी विनाश नहीं होंगे लेकिन उनकी बनी हुई चीज विनाश होगी। तो ये शरीर है, ये जड़ है, ये एलिमेंट्स का बना है। अब आंखों से देखते हैं और कभी कभी कहते हैं आप वहां गए थे ना कल, कहते नहीं मैं तो गया नहीं। मैं कहती देखो अभी मैंने अपनी आंखों से देखा, मतलब किसी की आंखों से देखा गया न्यूज नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने आपको अपनी आंखों से वहां जाता देखा। ये शब्द आप जरा अर्थ करके देखो, मैंने अपनी आंखों से आपको देखा, इसका मतलब देखने वाला मैं हूं, आंखें मेरी हैं, इन आंखों के थ्रू मैंने आपको वहां जाते देखा, इसका मतलब है मैं आंख नहीं हूं, मैं आंखों द्वारा देखने वाला। मैंने अपने मुख से आपको कहा कि कल ऐसा आप कर लीजिए, मैंने अपने मुख से कहा, बड़े अथॉरिटी से बोलते हैं, मुख मेरा है, मैं अपने मुख से, ये मुख मेरा है इसलिए मैंने अपने मुख से आपको कहा, अर्थात मैं मुख का प्रयोग करने वाली भी हूँ। मैंने अपने कानों से सुना आपने उसको मेरे लिए ये बात कही, कान मेरे हैं, थ्रू कानों से मैंने सुना। इन सब चीजों को देखते हुए हमें स्पष्ट पता चलता है कि ये कान नाक आंख हाथ पांव जो भी हैं, ये हमारी कर्म इंद्रियां हैं, कर्म करने के कर्मचारी हैं, जिनके थ्रू हम काम करते हैं। लेकिन कर्म करने वाली जो मैं शब्द उच्चारण करती है, मैं एक चैतन्य सत्ता आत्मा हूँ, एक एनर्जी हूँ इस बॉडी के अंदर। और एनर्जी के लिए तो कहा भी गया है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, ना बनती है ना नाश होती है। मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ। तभी कोई शरीर छोड़ता है तो हम फौरन क्या कहते, लाइट हैज गॉन, ज्योति चली गई, प्राण पखेरु हो गए, आत्मा शरीर छोड़ गई। क्योंकि हम सब आत्माएं हैं, अविनाशी हैं, अजर हैं, अमर हैं। जब तक हमने अपने आप को आत्मा नहीं समझा, तब तक परमात्मा से कनेक्ट हम हो ही नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर लीजिए। इसलिए कईयों ने कोशिश की कि कनेक्ट होने के लिए उल्टे लटको सीधे लटको, गंगा जी में सारा दिन ठंडे पानी में खड़े रहो, कुछ भी कर लीजिए, आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो सकता है जब तक आपने बॉडी से अपने माइंड और इंटेलेक्ट को पहले डिटैच नहीं किया। और जब हम डिटैच करते हैं और ये समझते हैं कि मैं इस शरीर की मालिक, इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ, अविनाशी शक्ति हूँ जिसका कभी नाश नहीं होगा। बॉडी चेंज हो सकती है, मैं दूसरी बॉडी में जाऊंगी, तभी मरने वाले के लिए बोल देते हैं, आपने सुना वो चल बसे, जहां से चले वहां मृत्यु है, जहां वो आत्मा अब जाकर एग्जिस्ट की बसी वहां जन्म हुआ है। आत्मा कभी मरती नहीं। तो जब आप बैठो उस परमात्मा का संग करने के लिए, ताकि उस ईश्वर का रंग लगे और आप में वो बल आ जाए, वो खुशी आए, वो आनंद आए, वो प्रेम आए, क्योंकि उसके पास ये सब कुछ है, ये आपको दुनिया में किसी प्राणी मात्र से ये सब शक्तियां प्राप्त नहीं हो सकती, ये एक दाता से प्राप्त हो सकती। इसलिए भारत का योग वर्ल्ड फेमस, लेकिन वो योग क्या है ये मनुष्य नहीं जानते। इसलिए अनेका प्रकार के योगा संस्थान बन चुके हैं, ये पतंजलि का योग है, ये विपासा का योग है, ये फलाना योग है, कई नाम है। लेकिन मैं ऐसा समझती, योग का मतलब ही है आत्मा का परमात्मा से संबंध, इसी का नाम योग है। क्योंकि इसी से हमको उनकी शक्तियां और उनके कर्तव्य में हमको बल मिलता है। तो इस विद्यालय में उस परमात्मा का संग कैसे करें, जिससे हमारे संस्कारों में एडजस्ट करने की पावर आए, सबसे तालमेल बनाकर हम चल सके, अपनी गठड़ी राग अलापने का अलग ना हो जाए, अपने घर परिवार में भिन्नता होने पर भी हम एकता के जीवन को जी सके, और एक दो को सम्मान देते हुए अपने स्वमान में रह करके अपने जीवन को सुखद बनाएं, यही इस विद्यालय का एम एंड ऑब्जेक्ट है। यही योग और ज्ञान यहाँ पर सुनाया जाता है, जो आप समय प्रति समय सुनने आते हैं, और आज हमको भी आप सब से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतना ही समय है, मैं इतने समय में इतनी बात कह सकती हूँ। मुझे कहा गया इन्होंने कि आप इस विद्यालय के जो संस्थापक रहे साकार प्रजापिता ब्रह्मा, और इस विद्यालय की संस्थापक जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही वो मतेश्री कहलाती थी, जिनके साथ मैंने बहुत समय व्यतीत किया, और जो इस विद्यालय का जितना भी कार्य चलता रहा बहुत नजदीकी से देखने का मौका मिला, और उनके जीवन से बहुत सी प्रेरणाएं मिली। वो तो फिर कभी मिलते रहेंगे, शेयर करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। आप सबको कुछ मिनट के लिए मेडिटेशन में बिठाएं, योग में बिठाएं और थोड़ी कमेंट्री करें, तो भी आप सभी जहां भी बैठे हैं थोड़ा अलर्ट होकर सीधे होकर बैठ जाएंगे। ये शरीर है, इस शरीर को ऐसे ही समझिए, ये मुझ आत्मा का एक आसन, एक योगी आसन लगाकर बैठता है। कोई किसी की खाल का आसन बनाता है, कोई चटाई का आसन बनाता है, कोई कपड़े का आसन बिछाता है, लेकिन हम सभी इस शरीर रूपी आसन के ऊपर चेतन ने आत्मा एक डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट इस मस्तक के मध्य विराजमान है। आप सब तरफ से अपने मन और बुद्धि को निकालकर अपने में अपने मन और बुद्धि को कॉन्सेंट्रेट करें और थर्ड आई ऑफ इंटेलेक्ट के द्वारा आप सेल्फ को रियलाइज कीजिए। मैं चैतन्य शक्ति डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा, मैं आत्मा ब्रह्मकुटी रूपी कुटिया में विराजमान बहुत शांत पवित्र आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप है। इस देह से मन को हटा लीजिए, देह की दुनिया से मन को हटाकर अपने स्वरूप में मन को टिका लीजिए। ये हूं मैं चैतन्य शक्ति, चमकता हुआ एक दिव्य सितारा, अजर अमर अविनाशी। बहुत शांत स्वरूप हूँ, उज्जवल रूप हूँ, मुझ आत्मा का अविनाशी कनेक्शन परम आत्मा के साथ है। वो भी मुझ आत्मा के समान दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। शांति आनंद प्रेम शक्ति के सागर है। मैं अविनाशी पिता परमात्मा की अविनाशी आत्मा संतान है। ऐसे पिता के कनेक्शन में मैं आत्मा अपने पिता की सर्वशक्तियों की अधिकारी आत्मा बन सकती हूँ। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा अपने सम्मुख चमकते हुए एक डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट सुप्रीम पिता को ज्ञान नेत्र से देख रही हूँ। उनकी सर्व शक्तियों की किरणें सूर्य के समान चारों तरफ फैल रही हैं। मैं उन्हीं की शक्तियों की किरणों से एम्पावर हो रही हूँ। कुछ क्षण अपने पॉइंट लाइट रूप में स्थिर हो, सुप्रीम की याद व संबंध में उनकी शक्तियों की किरणों का अनुभव कर उनसे शक्तियां लेकर अपने को शक्तिशाली बना रही हूं।
अपने जीवन के ताल को सबके साथ मिला के कैसे चलना है, बहुत सुंदर रीति से अनुभवों के द्वारा अपने झोली को भरे हैं आदरणीय दीदी जी। दीदी को देखते हुए यही शब्द निकलते हैं अंदर से, प्यार दुलार ज्ञान अतः पाए, गुणों का गुलदस्ता बन खुशबू फैलाए, है ना, गुणों का गुलदस्ता बन खुशबू फैलाए, हर संकल्प स्वास धड़कन में परमात्मा को समाए, ऐसे चैतन्य मूर्त हमारे प्रांगण में आए। आज दीदी हमारे प्रांगण में आए, त्याग तपस्या सेवा में जीवन बिताए, निर्माणता से अपनी परमपिता परमात्मा को रिझाए, अनुभवों की खान बनकर आए और अपने अमूल्य वचनों से हमारे जीवन को सजाए, हमारे जीवन को सजाए, हमारे जीवन को सजाए। आज चक्रधारी दीदी ने सच में हमारे जीवन के गुलदस्ते को बहुत सुंदर रीति से गुणों से कैसे महकाना है मार्गदर्शन दिए हैं। कोटि कोटि धन्यवाद दीदी का, और हम बाद में भी दीदी को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं संडे टॉक में। यस यस, थैंक यू वेरी मच दीदी, थैंक यू वेरी मच।